अब हम चलेंगे इंशाल्लाह अपना कब्र के बयान का। आज का अहम तरीन टॉपिक है, क्रिटिकल तरीन, जिसमें लोग मस्जिदें तो छोड़िए अपने मदारिस और अपनी रिश्ते तक अलग कर लेते हैं, और वो क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी। हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं, आलमुल बरज़ख, बरज़ख की हकीकत। पिछले हिस्से में क्या पढ़ा हमने, अमूमी तौर पे बरज़ख क्या है, उससे अगली नशिस्त में क्या पढ़ा, शुहदा की बरज़ख कैसी है। आज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बड़ा तवील टॉपिक है। आज इंशाल्लाह कुरान पाक की आयात और नबी सल्लम की अहादीस इकट्ठी सुनने के बाद इस मौजू पे आपका शरह सदर हो जाएगा। वो सवाल जो मुसलमानों के दिलों में आता है, क्या अल्लाह के नबी कब्र में हैं कि नहीं, जिंदा हैं कि नहीं, लाइक दिस दैट, और बहुत अहम सवाल है। तो इंशाल्लाह आज हम इस पे बात करेंगे। और मैं आपको अभी से बताऊं, इसमें एक बात मेरे नज़रियात नहीं है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये दलील की बात है। हमारा दीन कुरान और सुन्नत को दलील बनाता है। जो बात कुरान की आयत से साबित हो जाए या सेम वही बात किसी सही हदीस से साबित हो जाए, वो हमारा मसलक है, वही है हमारे इस कुरान का बुनियादी मौजू। तो इंशाल्लाह ताला दलाइल की बुनियाद पे बात करेंगे। अपने लिए भी दुआ करती हूँ और आप सबके लिए भी कि अल्लाह ताला हम सबको इस मौजू को पूरा सुनकर पूरा समझने के बाद फिर जो हमारा दिल माने सही हक बात है उस पे जमने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी, ये वो मौजू है कि जिस पे आज मुसलमानों में दो इंतहाएं पाई जाती हैं। पिछले टॉपिक की तरह पहले आपको वो बताऊंगी जो हमारे इर्द गिर्द है, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर दोनों में से किसकी सोच ठीक है कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो पहली बात तो नोट कीजिएगा कि हमारे यहाँ अमूमन इस मौजू पर कि अल्लाह के नबी सल्लम की बरज़ख़ की ज़िंदगी कैसी है, उसकी क्या हकीकत है, दो इंतखाएँ पाई जाती हैं। एक गिरोह क्या कहता है, अब नोट कीजिएगा, ये हम उनकी बातें पढ़ रहे हैं जो इस वक्त के एग्जिस्टिंग मुस्लिम्स हैं। एक गिरोह का ख्याल क्या है कि नबी सल्लम अपनी कब्र में इसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह वो दुनिया में ज़िंदा थे, जबकि दूसरे गिरोह का अकीदा क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी तरह मौत वाकई हुई जिस तरह दूसरे इंसानों पर वाकई हुई, लिहाजा वो जिंदा नहीं बल्कि फौत हो चुके हैं। बात वाज़े, पहला गिरोह क्या दावा करता है कि आप अभी जिंदा हैं। तो जाहिर है कि जो भी कोई दावा करता है उसके पास कुछ दलाइल होते हैं ना। तो नोट कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र मुबारक में जिंदा साबित करने वाला गिरोह क्या दलाइल देता है। नंबर एक, वो कहते हैं कि अंबिया कराम की जो हयाते बरज़खी है ना, वो हकीकी है, हसी है, यानी आप उसको महसूस कर सकते हैं, और जैसे दुनिया की ज़िंदगी होती है वैसी है, बस एक लम्हे के लिए अंबिया कराम पर मौत तारी की जाती है और उसके फौरन बाद उनको ऐसे ही ज़िंदगी दे दी जाती है जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो गोया कि वो ज़िंदा होता है। और ये बात जो मैंने आपको भी बताई है कि इनका ये अकीदा है कि नबी जो है वो थोड़ी देर के लिए फौत होते हैं और उसके बाद फौरन ज़िंदा कर दिए जाते हैं। आप कहेंगे ये कौन कहता है, पहले तो आप नोट करें क्या क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा गिरोह हज़रत ईसा के बारे में ये नहीं कहता, यही कहते हैं, मेरी बीसी और लोगों से बात हुई है, वो यही कहते हैं, हु वॉज ऑन द क्रॉस, दैट वॉज जीसस। तो मैंने कहा आज जीसस जिंदा, यस के ओ वो जानता। ये जो ईस्टर है, जो मेरा गुमान है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके बारे में भी यही गुमान है, गुड फ्राइडे के है कि जीसस जिंदा होकर दोबारा दुनिया में आ गए थे। तो बातिल चीज़ें पलट के आती हैं, इसी तरह हिंदू धर्म को देखिए और मज़ाहिब में वो अपने खुदाओं के मरने के कायल नहीं होते, बस वो कहते हैं एक लम्हे के लिए पर्दा फरमाते हैं वापस आते हैं। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं औलिया कराम के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए, जब लोग उनकी कब्रों पे जाते हैं कहते हैं वो फौत तो हुए थे लेकिन आप नऊज़ु बिल्ला दोबारा ज़िंदा, और कब्र में ज़रा नोट तो कीजिए। तो ऐसे लोग ये दावा करते हैं कि नबी सल्लम पे भी बाकी नबियों की तरह वक्ती तौर पे मौत आई थी लेकिन उसके बाद वो ज़िंदा कर दिए गए। ये बात कहाँ है, रेफरेंस ले लीजिए, किताब का नाम है अल मलफूज़ात, ज़ोए के साथ होता है, मीम लाम फा बो ज़ोए अलिफ ता, मलफूजात किताब है और राइटर है अहमद रज़ा साहब, सफ़ा नंबर ले लीजिए 276। यहाँ वो लिख रहे हैं कि अल्लाह के नबी थोड़ी देर के लिए फौत हुए थे और दोबारा ज़िंदा कर दिए गए। दूसरी इनकी दलील क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी और वफात में कोई फ़र्क नहीं, अपनी उम्मत को देखते भी हैं, इनके हालात भी जानते हैं, इनकी नियतों, इरादों और दिल की बातों को जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बात है, किताब का नाम है खालिसुल एतिकाद, सफ़ा नंबर 39। तीसरी दलील लीजिए। असल में तो हम उन्हीं की किताबों को प्रमोट कर रहे हैं ना इस वक्त, ये बातें उनकी बताकर। गलत हो तो कोई पूछ सकता है, मार्केट में आपको ये किताबें मौजूद हैं। तीसरी बात, इसको कहने से पहले मेरी ज़ुबान लरस रही है। और वो कहते हैं कि अंबिया कराम की कबूर मुतहरा में अजवाज मुतहरात पेश की जाती हैं और वो इनसे शाबाशी फरमाते हैं। इतना बड़ा दावा कौन करता है? किताब है मलफूजात, अहमद रज़ा साहब की किताब है, पेज नंबर 276 है। देख ले, मैं ये सिर्फ जुमले इस सोच से पढ़ रही हूँ कि नकले कुफर, कुफर नबाशत। अरे फारसी का एक जुमला है कि कुफर को नकल करना पड़ जाता है ना कहीं, तो वो कुफर नहीं हो जाता। यानी दिल के इकराह के साथ पढ़ रही हूँ ये बात। एक चौथी दलील जो ये लोग देते हैं, देखिए ना, मैं अगर आपको ये दलाइल ना दूँ तो पहले तो आप कहेंगे आपने इल्ज़ाम लगाया, कौन ऐसा कहता है? कह सकते हैं ना, मैं आपसे ये कह दूँ, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा है और आपकी अजवाज पेश की जाती हैं, तो आप मेरे पे शक करेंगे ना कि आपने ऐसी इतनी बड़ी बात कह दी। तो मैं तो नहीं कह रही, वो जो कह रहे हैं उनकी बात आपको सिर्फ बता रही हूँ। चौथी दलील जो वो पेश करते हैं, वो कहते हैं कि इमाम कुतुब सैयदना अहमद रिफाई रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने खड़े हुए और अरस की दस्ते मुबारक अता हो कि मेरे अलावा इससे बहरा पा जाए। यानी कि इस शख्स ने अल्लाह के नबी को कहा, अपना हाथ मुझे दीजिए ताकि मैं आपके हाथ को चूमूं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक, सुनिएगा अगला जुमला, रोज़े शरीफ में से ज़ाहिर हुआ, यानी कब्र में से आपका हाथ निकला और इमाम रिफाई ने इस पर बोसा दिया। इतनी अबस बात कहाँ लिखी है? मजमुआए रसाइल किताब का नाम है और अहमद रज़ा साहब की बुक है, पेज नंबर 173। कोई तस्वुर भी कर सकता है इस गुस्ताखी का? ये होता है जब आप अपने बुज़ुर्गों का इकराम बढ़ाते हैं ना, तो आप अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम कम कर देते हैं। पांचवी उनकी दलील क्या है, लिखते हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको कोटेशन। ये 6:30 बजे यानी शाम का वक्त था कि बारगाह नबूवत सजी थी। मुझे तकरीबन 25 साल हुए हैं कि बारगाह नबूवत की हाज़िरी से मुशर्रफ हूँ। कह रहे 25 साल से मैं अल्लाह के नबी की महफिल में आता जाता हूँ। शेखैन करीमैन यानी दो बड़े बुज़ुर्ग अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो बहुत ज़्यादा मुतवज्जे पाया। यानी जब मैं अल्लाह के नबी की महफ़िल में गया तो वहाँ अबू बकर और उमर दोनों भी थे और बड़े मुतवज्जे होकर बैठे थे। ख़ुसूसी एहतमाम में हज़रत जी, मुराद है मौलाना अल्लाह यार ख़ान, ये इनके बड़े बुज़ुर्ग थे, इनको घिरा पाया। यानी उसी महफ़िल में जहाँ ये सब हो रहा था, वहाँ बड़ा एहतमाम हो रहा था मौलाना अल्लाह यार ख़ान के लिए। मैं बेनवा हमरकाब था, यानी मेरी औकात तो कोई नहीं, लेकिन मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। बहुत शानदार और अजीब तरह का लिबास हज़रत के ज़ेबे तन था, सर पर ताज जगमगा रहा था, ख़ुसूसी नशिस्त बनी थी नबी रहमत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबस्सुम कुना अब्रे रहमत बरसा रहे थे। और मैं सोच रहा था कि इज़्ज़त अफज़ाई जो एक बिल्कुल अनोखी तर्ज पर है, यानी जो हमें आज यहाँ इतनी इज्जत मिल रही है, गालिबन हज़रत जी को कोई बहुत ही ख़ास मनसब अता हो रहा था। ये कैफियत 6:30 बजे से 7:45 बजे तक रही। यानी आपने इन बुज़ुर्ग को लोगों की नज़रों में बड़ा कराने के लिए ये बात बता रहे हैं। और ये कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं? इरशादुल सालेकीन किताब का नाम है, हिस्सा अव्वल, राइटर हैं मौलाना मोहम्मद अकरम और सफ़ा नंबर 19 है। चलिए एक और लीजिए। लिखते हैं कि मेरी बैते बातें यानी मेरे दिल के अंदर जो बैत थी, बिला वास्ता खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह हुई कि मैंने देखा कि हजूर एक बुलंद जगह पर रौनक अफरोज़ हैं, सैयद अहमद शहीद का हाथ आपके दस्ते मुबारक में है और मैं भी इसी मकान में बवजह अदब दूर खड़ा हूँ। हजरत सैयद ने मेरा हाथ पकड़कर हजूर के हाथ में दे दिया, यानी गोया कि अल्लाह के नबी के फिज़िकल हाथ को इन्होंने महसूस किया तभी दिया। ये कोटेशन पढ़ी गई है शमाइल इमदादिया, हाजी इमदादुल्ला, सफ़ा नंबर 108 से। यानी ये कोट जो की गई है वो यहाँ से की गई है। इनकी दलील सातवीं, लिखते हैं कि हज़रत जी, मुराद वही मौलाना अल्लाह यार खान साहब हैं, आम मजलिस में ज़िक्र फरमाया करते थे कि मुझे हजूर ने मुंडी हुई दाढ़ी वाले, कौन होते हैं, क्लीन शेव, کسی شخص کو دربار نبوی میں ساتھ لانے سے منع فرمایا ہے، حالانکہ حضرت جی بھی بلا ارادہ یہ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے بعد تو حال یہ ہو گیا کہ دربار نبوی کی حاضری کے وقت خاص خیال رکھا جاتا تھا اور رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ساتھ نہ جائے جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو۔ یہ کوٹیشن ہے ارشاد السالکین صفحہ نمبر 80۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی میں اللہ کے نبی کی محفل میں جاتا ہوں تو آپ مجھے اس بات پہ بہت مائل کرتے ہیں کہ کسی کلین شیف شخص کو اپنے ساتھ نہ لایا کرو۔ اب مجھے بتائیے، یہ 7 دلیلیں انہی کی کتابوں کی انہی کے نام ہیں، کوئی غلطی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ اگر کوئی بندہ یہ سب کہتا ہے تو مطلب کیا؟ حیات النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ یہ سارے معاملات جو کرتے کراتے ہیں یہ درست ہیں۔ لوگوں کو ان سارے واقعہ سے کیا ثابت کرایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی زندہ ہیں، تبھی تو یہ ہو رہا ہے۔ چلیے آپ اور میں دوسری طرف چلتے ہیں، یہ جتنے بھی واقعات پڑے ہیں یہ عقیدہ درست ہے کہ غلط، اس کے بارے میں ہم کس سے پوچھیں گے؟ قرآن پاک سے پوچھیں گے۔ تو نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بارے میں کتاب اور سنت کے دلائل، اب آپ یہ نوٹ کریں گے، یہ ہے اصل چیز۔ سورۃ زمر آیت نمبر 30، انک میتون و انہم میتون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے لیے جو لفظ عام مسلمانوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہی لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی موت دوسرے لوگوں پر واقع ہوتی ہے ویسی ہی آپ پر بھی۔ بات واضح؟ چلے یہ پہلی دلیل، آگے چلیے۔ سورۃ الانبیاء 34، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئمت فهم الخالدون۔ تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا تم مر جاؤ گے تو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا پتہ چلا اس آیت میں؟ دو باتیں۔ پہلی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ جتنے انبیاء کرام گزر چکے ان پر بھی موت آئی، مانتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ پر بھی آنے والی ہے، اور ابدی زندگی نہ تو پہلے کے انبیاء کو ملی نہ آپ کو ملے گی۔ کوئی شبہ ہے اس آیت کو دیکھنے پڑھنے کے بعد؟ تفسیر سن لیجیے اس کی، اور آپ سوچئے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں تفسیر انٹرنیٹ پہ دیکھی، فلاں کوٹیشن، فلاں اسکالر کے ویڈیوز دیکھے۔ یاد رکھیے، اس آیت کی تفسیر وہ بندہ کیا کرے گا جو اللہ کے نبی کے زندہ رہنے کا قائل ہے؟ پوائنٹ سمجھ گئے؟ ہر بات سننے کے قابل نہیں ہوتی، ہر خوبصورت زبان سے بولنے والا حق پیش کرے تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر وہ حق پیش نہیں کر رہا تو کڑوی باتیں سن لیجئے لوگوں کی، لیکن حق بات لیجئے۔ آپ بیمار کو کڑوی گولی دیتے ہیں کہ میٹھی؟ میٹھی اس لیے دیں کہ اس کا منہ کڑوا نہ ہو، کڑوی دینی پڑتی ہے۔ ایون آپ دیکھتے ہیں کہ کیمو تھراپی ہو جاتی ہے کینسر کے مریضوں کی، علاج مقصود ہے نا۔ تو قرآن کی آیت کی تفسیر ایسی نہ سنیں۔ کسی نے کہا میں ایک آیت چوز کرتی ہوں، پھر میں اس کو بھی سنتی ہوں، میں اس کو بھی سنتی ہوں، میں اس کو بھی۔ آپ ایک پڑھ چکے ہیں نا اچھی چیز، آپ کو قرآن کا شرح صدر ہو گیا، انشاءاللہ آپ کسی اور کو بھی سنیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حق ہے کہ باطل۔ لیکن آپ جا کر بڑی سکرین کھول کر اس کی، چلو میں مثال ہے، ایک نے کہا کہ میں نے پردہ کرنا تھا چہرے کا اور میرے دل میں جھکاؤ آ رہا تھا، جو بھی کہیں جاتی ہوں گی ادھر کسی نے ان کو قائل کیا، کہیں گے میں نے کہا چلو لیٹ سی وٹ ادرس سیز۔ میں گوگل پہ آئی، میں نے لکھا چہرے کا پردہ فرض ہے، کہتی اتنے وہ اسکالرس کھولے، اس کے بعد میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا۔ وہاں آپ کو یس کہنے لے بھی ملیں گے، نو کہنے لے ملیں گے۔ وہاں کوئی غیر مسلم ایک آرٹیکل ڈال دیتا ہے چہرے کے پردے کو چھوڑیے، وہ تو جسم کے پردے کو بھی ناجائز کرے، آپ کو کیا پتا وہ کون ہے؟ کیا آپ اس طرح سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی ہے اسکولوں میں؟ کتنا ہم خیال رکھتے ہیں آتھینٹک اور نان آتھینٹک کا، تو کیا دین آپ ایسے لیں گے؟ نسبت کے ساتھ دین ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی باتیں کہیں بھی پڑھیں، آپ کو اجازت ہے آپ پڑھیں، اگر آپ قرآن پورا پڑھ چکے ہیں، آپ کے امتحان ہو چکے، آپ کا شرح صدر ہو گیا، جائیے پڑھیے، سنیے، دیکھیے، جو مرضی کیجئے، لیکن اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ایک اور کرائیٹیریا نوٹ کریں، جس بندے نے، مثال ہے کہ میری یہ باتیں اس وقت، آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کو ٹرسٹ ہے نا اپنے استاد پہ، اور میرے پہ نہ ہو، کیا قرآن کی آیتوں پہ ٹرسٹ ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث پہ ٹرسٹ ہے نا؟ आपको बात समझ आएगी। ये बात अगर कोई बाहर सुन रहा हो, यानी यूट्यूब पे इस वक्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक पे जाता है, ऐसे ऐसी जगहों पे चला जाता है, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि ओपन है, क्योंकि अल्लाह का कलाम उसके बंदों के नाम, हर एक को बात नहीं समझ आएगी। और अगर किसी को नहीं आ रही इस वक्त भी, तो मैं उनको एक ज़रूर मशवरा दूंगी, किसी ऐसे शख्स से, मर्द है तो आप मर्दों से, औरत है तो औरत, जिस पे आपका दिल मुतमईन है, पहले पूरा कुरान पाक समझिए, बगैर किसी मसलक के नाम पे, फिरके के नाम पे, गिरोह के नाम पे, इंस्टीट्यूट के नाम पे, कुरान और हदीस की रोशनी में एक बार कुरान पाक समझ लें, फिर मेरी ये बातें पढ़ें, किसी से भी समझ लें, फिर दलाइल समझ आते हैं। अल्लाह की तरफ से एक फुरकान भी मिलता है कुरान पढ़ने वाले को। मसला क्या कि हमारी अक्सरियत ने कुरान तो उस तरह नहीं पढ़ा ना कि जिस तरह पढ़ना था, तो फिर ये बातें सुन के क्या कहेंगे, पता नहीं जी, देखो देखो ये क्या बातें कर रही हैं, ये कौन है, ये लोगों को बिगाड़ रही हैं। भाई आप बताइए, आपने पढ़ा कितना है? जैसे कोई नई बात अगर हो सकता है किसी को लगे, वो कहेंगे, एक ऐसे किसी से हुआ ना, कहा मैंने तो आज तक ये बात कभी नहीं पढ़ी। तो मैंने उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन, आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? क्या मतलब? मैंने कहा आप कुरान पाक पढ़ चुकी हैं? नहीं, वैसे मैं दर्स बहुत सुनती हूँ। अच्छा, मैंने कहा आप सही बुखारी पढ़ चुकी हैं? नहीं। सही मुस्लिम पढ़ी आपने? अबू दाऊद, तिरमिजी, सियासत, नाम भी नहीं पता। तो मैंने कहा फिर आपने ये जो जुमला कहा ना, मैंने कभी ये बात नहीं पढ़ी, तो ये या तो फिर आपने किसी अखबार में पढ़नी थी, या किसी मैगजीन का कोई सफ़ा होगा, इस्लामी सफ़ा, ऐसे दीन नहीं आता, ये मजाक है। आज के दौर के मुसलमानों को ये पैगाम दीजिए, किसी के मसलक, किसी की जमात, किसी के गिरोह का नाम लिए बगैर ऊपर चले जाएं, जाकर मार्केट में के सबसे पुरानी तफसीर कौन सी है, क्योंकि जो जितनी नबी सल्लम के करीब के वक्त की दौर की होगी ना, वही अच्छी होगी ना। सबसे पहले मुफस्सिर कुरान कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबे कराम थे। आपको अगर नबी सल्लम की अहदीस की रोशनी में तफसीर मिलती है, वो लीजिए। आप कहेंगे वो कहाँ मिलती है? हर हदीस की किताब में एक पूरा चैप्टर होता है किताबुत तफसीर, मेरी बात पे जाकर सर्च कर लीजिए। बुखारी पढ़ाई है, किताबुत तफसीर पढ़ाया उसका, कुरान पाक की चीदा चीदा आयतों की तफसीर, यदि जब वो आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, वो सारी हदीस की किताबों में सेव है माशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरी होती है तफसीर मासूर, असर से सहाबा, जिसमें मैं आप सबको रेकमेंड करती हूँ पढ़नी है तफसीर इब्ने अब्बास, पढ़ लीजिए, अल्लाह के नबी के सहाबी। आपकी दुआ, अल्लाहुम्मा युफक्किहुल किताब, अल्लाह इनको किताब का फहम दे, इनका सीना खोल दे। उनको क्या कहते हैं हज़रत इब्ने अब्बास को? मुफस्सिरुल कुरान। जिस शख्स की गवाही अल्लाह के नबी ने दी हो, क्या उसमें शक होगा? बेसिक्स वहाँ से लीजिए। लोग कहते हैं पुरानी तफसीरें आज के दौर में कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, बात नोट कीजिएगा। दुनिया में लेटेस्ट लफ्ज़, ये देखिए ना, फ़ोन है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। सबसे अच्छा फ़ोन हम किसको कहते हैं जो कि लेटेस्ट हो? आईफोन एक्स, एक्स प्लस, 11, फुला। आईफोन 3 को लेगा आज? दुनिया की चीज़ों में हमेशा लेटेस्ट ज़्यादा एडवांस होता है, ज़्यादा उसमें चीज़ें होती हैं। दीन की चीज़ों में जितना पीछे जाएंगे, ये लफ्ज़ सुन्नत क्या है? सन्ना या सुन्नो, कोई बता सकता है? मेरा दिल खिल जाएगा माशाल्लाह। कुरान में कहाँ आया जहाँ लम यतसन्ना, गला सड़े ही नहीं? शाबाश, तीसरे पारे के बिल्कुल शुरू में। खाना जो एक फौरन ख़राब होता है, 100 साल तक खाना पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, और गदा जो था वो हड्डियाँ बन गया। वहाँ लफ्ज़ है ना लम यतसन्ना, उसका रूट है सीन नून नून, सुन्नत, ये है लफ सुन्नत। हम कहते हैं ना सुन्नत रसूल, पुरानी चीज़। इसका ऑपोजिट क्या है? मुहदस, हदस कहते हैं नए को, हदीस, बात समझ गए? बिदा, और उर्दू में इसको बिदत भी कहते हैं, अरबी में भी कहते हैं। वापस आ जाइए इस मौजू पे, ये इल्म का तूफान है। और अगर आपकी आंखों पे किसी मसलक की पट्टी नहीं है, आप किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, मजबूरी है, मैंने अगर ये बात ना कही तो फलां नाराज़ हो जाएगा, कह दी तो फलां खुश हो जाएगा, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो लिहाजा कुरान की ये 2 आयतें, तीसरी भी नोट कीजिए, और बग़ैर किसी, कहते हैं ना कि तुम कुरान पढ़ लो तो तुम्हारा कोई मसलक नहीं रहेगा। मसलक पैदा ही तब हुए जब लोगों ने कुरान को पढ़ने और हदीस को समझने से अपने आप को दूर किया, और चंद लोगों को ही असल चीज़ समझ के आगे चल पड़े। और इसकी बहुत सारी तफसीलात है जिसकी इस वक्त कतन ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कुरान और सुन्नत के दलाइल आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं।